اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تفسير دیکھتے ہیں آیت نمبر 21 سے. یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو, عبادت کرو اپنے اس رب کی جس نے تم کو پیدا کیا اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے. کیوں کرو عبادت؟ اس لیے کہ لعلکم تتقون, تاکہ تم بچ جاؤ. کون ہوتا ہے رب؟ اس سے یہ تو پتہ ہی نہیں چلا. اس کے دلائل پھر اگلی آیت میں دیے گئے. الذی جعل لکم الارض فراشا, وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا. اور والسماء بناء, اور آسمان کو چھت بنایا. بس اتنا ہی نہیں. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً, پھر اس نے آسمان سے بارش یعنی پانی اتارا. پھر کیا ہوا؟ پس اس نے نکالا اس کے ذریعے, بِهِ, ہی سے مراد ماں ہے, پانی کے ذریعے, مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا, پس پھر اس نے اس پانی کے ذریعے پھلوں میں سے رزق نکالا. کس کے لیے؟ لَكُمْ, تمہارے لیے. اتنی نعمتوں کو پانے کے بعد اب تمہارا کیا فرض بنتا ہے؟ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, پس تم اللہ کا شریک نہ ٹھہراؤ کسی اور کو اور تم جانتے ہو. یہاں تک اس رکوع کا پہلا حصہ. اس پورے رکوع کے تین حصے ہیں. انشاءاللہ تعالی جہاں تک ایک حصہ ہوگا وہاں تک ہم بات اکٹھے کریں گے. ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی دفعہ انسانیت کو پکارا. اس سے پہلے سورت بقرہ میں مانگی ہوئی دعا اہدنا الصراط المستقیم کے نتیجے میں سورت بقرہ کی ابتدائی 20 آیتوں میں ہدایت کے اعتبار سے تین قسم کے انسانوں کا تذکرہ ہوا. پہلی 5 آیتوں میں وہ لوگ جنہوں نے ہدایت کو قبول کیا, پھر 2 آیتوں میں وہ لوگ جنہوں نے بالکل انکار کر دیا, اور پھر اس کے بعد 13 آیتوں میں ان لوگوں کا تذکرہ کہ جن کے کبھی دل نے نہ مانا, کبھی زبان نے نہ مانا, اور وہ منافق تھے. اب یہاں پہلی بار انسانیت کو پکارا جا رہا ہے. یہ قرآن پاک کا پہلا یا ایہا الناس ہے, اے لوگو. اللہ تعالیٰ نے ساری عصبیتوں کی جڑ کاٹ دی اور بتا دیا کہ انسانوں کی کوئی تقسیم اس تقسیم کے مقابلے میں پیش نہیں کی جا سکتی. نہ اسلام لوگوں کو رنگ کی بنیاد پہ پکارتا ہے کہ او یہودیو, او عربو, او اجمیو, او پاکستانیو, او فلان. نہیں, نہ اسلام کسی کو رنگ سے پکارتا ہے کہ او گورو, او کالو, او فلان. نہ اللہ تعالیٰ کسی کے وطن پہ, نہ کسی کے گروہ پہ پکارتا ہے. اللہ تعالیٰ لوگوں کو پکارتا ہے ان کے انسان ہونے پہ. یا ایہا الناس, دعا کریں کہ آج ہم قرآن پاک کا پہلا یا ایہا الناس پڑھ رہے ہیں تو ہماری زندگی میں وہ وقت ضرور آئے کہ جب ہم یا ایہا الناس جب آخری دفعہ آئے گا قرآن پاک میں تو اس کو بھی پڑھ رہے ہوں اور اس پہ عمل کرنے والے بنے. انسانیت کے لیے یہ دعوت ہے. سب سے پہلی چیز تو اس میں سے جو عمل کی ہم لکھ سکتے ہیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن پوری انسانیت کے لیے, یہ صرف مسلمانوں کی چیز نہیں. اور یہی تھی وہ آیات جس نے یوسف اسلام کے دل کے تالے کھول دیے. پہلے کیٹ سٹیون کے نام پہ ایک فیمس سنگر تھا. کسی موقع پہ اس نے جب یا ایہا الناس سے شروع ہونے والی کوئی آیت سنی تو گھبرا گیا. او مین کائنڈ, کہنے لگا کہ یہ کتاب تو مجھے پکار رہی ہے. اس کے بعد بس اللہ نے اس کے دل کو کھولا اور وہ اسلام کی طرف آیا. بات تو پھر یہ ہے کہ اس وقت تو سارے ہی اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے سن رہے ہیں. آج تو قرآن وہی پڑھے گا جو قرآن کو مانے گا ایمان کے ساتھ. وہ بھی پڑھ لیں تو اللہ کی رحمت ہے, لیکن انسانیت تک کون پہنچائے گا؟ ہم پہنچائیں گے. یہ ذمہ داری ہے ہماری. وی شوڈ کنوے دا میسج, پیغام تو پہنچانا ہے. ہمیں مسلمان ہونے کی بنیاد پہ ہماری الہامی کتاب کی صورت میں یہ کتاب مل گئی, लेकिन वो लोग जो अभी इस कुरान और इस्लाम से दूर हैं, फिर उन तक कौन पहुंचाएगा? हम मुसलमान पहुंचाएंगे। ये वो जिम्मेदारी है जो उम्मते मुस्लिमा के कंधों पे पेश की गई। अन्नास का लफ्ज़ कॉमन है, आम तौर पे इस्तेमाल होता है इंसान के मानों में। इसमें पिछले तीनों गिरोह आ गए। मुफस्सरीन कहते हैं कि अल्लाह ताला ने यहाँ ये नहीं कहा कि या युहल मुत्तकीन, या युहल काफिरून, या युहल मुनाफिकून, ये नहीं कहा, बस या युहन्नास कहा। तो इसमें वो तीनों गिरोह आ गए। गोया कि अब सब तवज्जो कर ले कि अल्लाह ताला ने आसमान से उनको पुकारा है, क्योंकि जब नाम लेके पुकारा जाता है तो फिर जिम्मेदारी बढ़ जाती है। पूरी दुनिया पर हुज्जत कायम हो गई। औरतें, मर्द, बच्चे, गोरे, काले, सबको पुकारा। क्या कहा? इबादत करो। इबादत के मानी क्या हैं? गौर कीजिएगा, यहाँ वो बुनियादी पैगाम दिया जा रहा है जो पूरे कुरान पाक की दावत का खुलासा है। और वो क्या? कि बंदा अल्लाह का बंदा बन जाए, बंदगी के रंग में आ जाए, इबादत में डूब जाए। तमाम अंबिया कराम और रसूलों की दावत यही थी। सूरत आराफ और सूरत हूत में एक एक रसूल का नाम लेकर इन उनकी दावत जो बयान की गई वो क्या थी? कि या कौम इबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरू, ए मेरी कौम के लोगो, अल्लाह की बंदगी करो, तुम्हारा कोई और इलाह उसके सिवा नहीं। इसी तरह सूरत शुरा में रसूलों की दावत के ज़िमन में कहा गया, फत्तकुल्लाह व अतीउन, बस अल्लाह का तकवा इख्तियार करो और मेरी बात मानो, मेरी इताअत करो। सूरत नूह में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दावत बयान की गई कि अनिबुदुल्लाह व तकूहु व अतीउन, आयत नंबर 3 है, अल्लाह की बंदगी करो और उसका तकवा इख्तियार करो और मेरी बात मानो। तो गोया के पहली बात इस बात को सुनने के बाद जो मालूम हुई कि दुनिया में इंसान की तख्लीक का मकसद क्या था, कि बंदा रब की इबादत करे। सूरत ज़ारियात आयत 56 में भी आता है, वमा खलकतुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून, मैंने जिन्नों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। इसी की दावत मुख्तलिफ दौर में दी। फ़र्क सिर्फ इतना है कि पहले अंबिया कराम आए तो या कौमी कहते रहे, लेकिन जब मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, जिनको अल्लाह ताला ने रहमतुल आलमीन बनाकर भेजा था, तो उन्होंने या कौमी का दावा कभी नहीं किया, बल्कि या यूहन्नास। इससे पता चलता है कि पिछले अंबिया कराम ख़ास तौर पे एक वक्त और एक ज़माने के लोगों के लिए आए थे, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि आखिरी और कामिल रसूल हैं, इनकी दावत क़यामत तक की दावत है, लिहाजा सब लोग इसके मुखातिब हैं। इसलिए ये ना कहा करें कि हमारे रसूल। कभी भी आप किसी नॉन मुस्लिम से या गैर मुस्लिम से बात करें तो बात में ये कहें हमारे रसूल ने ये कहा, नहीं, आप उन्हें कहा करें, यानी अपने की बजाय उनको भी साथ शामिल करें कि हम सब के रसूल ने ये कहा, इसलिए कि रसूल वो सबके हैं। फिर दूसरी बात देखिए कि अब सवाल पैदा होता है कि इबादत होती क्या है। कुछ बात तो हम सूरत फातिहा में कर चुके, लेकिन हकीकत यह है कि लफ्ज़ इबादत इतना बड़ा और अहम लफ्ज़ है कि इसका एक लफ्ज़ में मतलब पूरा ही नहीं होता। इसलिए मुफस्सरीन ने इस ओ बुदू के कितने ही मानी किए। किसी ने कहा अतीयो, इबादत करने का हुक्म दे के क्या ये कहा कि बस सारा दिन नमाज पढ़ते रहो? आज एक महदूद सा तसव्वुर जो इबादत के नाम पे हमारे जहनों में है कि हाथ में तस्बीह ले लो, दाने घुमाते जाओ, चाहे साथ बातें करते जाओ, ये इबादत नहीं है। इबादत में इताअत, बंदगी और गुलामी, मोहब्बत अल्लाह से, डर अल्लाह का, तवक्कुल उसका, खौफ उसका, उम्मीद उसकी, शुक्र उसका, उसकी दी हुई तकदीर पे राजी होना, ये सारे लफ्ज़ इबादत में आते हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को बंदगी का सबक दिया कि देखो तुम दुनिया में आए हो तो अब रब को मानना पड़ेगा, रब की तरफ चलना पड़ेगा, लिहाजा या अय्युहन्ना सोबुदू रब्बकुम। अगली बात, इबादत करो अपने रब की। यानी बंदगी में आ जाओ, गुलामी में आके तो देखो, तुम्हें पता लग जाएगा कि एक रब के बनने में लज्जत कितनी मिलती है। और हकीकत यह है कि हमने आज तक बंदगी का और गुलामी का मज़ा नहीं चखा। हमने नफ्स की गुलामी की, हमने रस्मों रिवाज की गुलामी की, हमने ससुराल वालों की गुलामियाँ की, हमने मुआशरे की गुलामी की, हमने बच्चों की गुलामी की, और इन सारी गुलामियों ने हमें उस असल गुलामी से दूर कर दिया जो मतलूब थी, और वो अल्लाह की गुलामी थी। इन सब में से किसी के साथ भी ताल्लुक़ रखने से अल्लाह मना नहीं करता, लेकिन अपने समझने के लिए एक नुक्ता रख लीजिए कि जहाँ मखलूक में से किसी का कोई तकाजा अल्लाह के तकाजों से टकराने लगे और अल्लाह की बात को छोड़कर मखलूक की मान ली जाए, तो इसका मतलब यह कि हम उसके बंदे बन गए। बस इतना सा फर्क है ना, बच्चों से प्यार करने को अल्लाह रोकता है, ना खानदान से, ना मुआशरे से, लेकिन उनकी गलत नहीं माननी। ला ताअत लिल मखलूक इन फी मासियत अल खालिक, अल्लाह के नबी सल्लम की रिवायत का खुलासा है कि जिस बात में खालिक की नाफरमानी हो उसमें मखलूक की नहीं माननी। छोटा सा बस असूल रख लें, आपके सामने आपके माँ बाप आ जाए, या आपका शौहर आ जाए, या आपके बच्चे आ जाए, खानदान आ जाए, शादी का मौका आ जाए, मौत का मौका आ जाए, एक असूल रख लें, जो मानने लगी हूँ क्या उसको करने से अल्लाह खुश होगा कि नाराज़ होगा? ऑफ कोर्स माँ बाप की बात मानूंगी, उनकी खिदमत करूंगी, अल्लाह खुश होगा, कर लीजिए। लेकिन अगर वही माँ बाप आपको शिर्क का हुक्म दें, फौरन वही असूल लाएं, इनकी ये बात मानूंगी तो क्या अल्लाह खुश होगा? नहीं, वो खुश नहीं होगा। अच्छा, बस फिर उनकी नहीं माननी, लेकिन उनके साथ ताल्लुक नहीं बिगाड़ना। तो लिहाजा अल्लाह ताला ने हमें तरीका बता दिया बंदगी करने का, और इसका रंग आए कैसे? क्योंकि जब हम सुनते हैं ना कि इबादत में इतना गहरा मानी है, इतना कुछ है, तो करें कैसे? देखिए, किसी की भी बंदगी उसको जाने बगैर नहीं होती। जिसका रोब हमारे दिल पे तारी होता है ना, उसी से मरूब होते हैं। मरूबियत कह ले आप, इम्प्रेस होना। अल्लाह ताला से कैसे इम्प्रेस हो कि उसकी इबादत करने को दिल चाहे? नमाज बोझ की बजाय लज्जत लगे, तो उसकी पहली चीज तो क्या है? मार्फत, पहचानी अपने रब को। और किसी को पहचानने के लिए लाजमी है कि उसके नाम, उसकी सिफात का पता हो। तो अल्लाह ताला के नामों पे गौर करके आप अल्लाह को पहचान सकते हैं। फिर कायनात पे तदब्बुर कीजिए, सूरज चांद सितारों को देखिए और कहिए, वाह, मेरे रब का कमाल है, ये मेरे रब का शाहकार है। आपका खुद ही दिल चाहेगा बंदगी के लिए। फिर आप उस वक्त सजदा ना भी कर सकें, लेकिन आपकी अकल झुक चुकी होगी अल्लाह ताला के आगे। फिर इसी तरह अल्लाह ताला के बंदों से प्यार करके आप अल्लाह की बंदगी के अंदर आते जाएंगे, और एक वक्त आएगा कि वाकई फिर वही बात कि चलना, फिरना, सोना, जागना, खाना सब इबादत बन जाएगा। अब यहाँ बात करके सिर्फ ये नहीं कहा कि बस करो, डू इट, कोई ऑर्डर नहीं है, क्योंकि अल्लाह को पता है कि कुछ बंदे बड़े रीजनिंग करने वाले होते हैं, वजूहात पूछते हैं, भाई क्यों मांगे? या युन्ना सो बुदू, इबादत करो। कहा क्यों? इसलिए कि रब्बकुम, वो तुम्हारा रब है। नोट कीजिएगा लफ्ज़ रब को। अस्माउल हुस्ना में से कोई और नाम भी इधर आ सकता था, और बज़ाहर अल्लाह का नाम भी आ सकता था जो असली नाम है। ये आयत ऐसे भी तो हो सकती थी ना, ए लोगो, इबादत करो अपने अल्लाह की, या युहन्ना सोबुदुल्लाह, आ सकती थी ना ये बात, नहीं आई। लफ्ज़ रब की जगह कितने ही लफ्ज़ आप यहाँ ला सकते हैं, पूरे 99 नेम आ सकते थे, लेकिन यहाँ लफ्ज़ रब को लाने की एक बहुत बड़ी हिकमत है। असल में ना, इस जुमले में दावे के साथ साथ दलील भी आ गई। क्यों? इसलिए कि इबादत की मुस्तहिक सिर्फ वो ज़ात हो सकती है जो इंसान की परवरिश की कफील हो, जो कतरे से कमाल तक पहुंचाने वाली हो, जो पानी के कतरे को सुनते, देखते, अकल, समझ, फहम रखने वाले इंसान में बदल दे। लफ्ज रब ने हमें मजबूर कर दिया इस बात पे कि देखो रब की इबादत करना तुम्हारी मजबूरी है, क्योंकि तुम कुछ भी नहीं थे और उसने तुमको पैदा किया, कोई और जात है जो ऐसा कर सके, इसलिए उसकी इबादत करो। कौन सा रब? अल्लज़ी खलक़कुम, जिसने तुमको पैदा किया, तुम उसकी तख्लीक हो, तुम उसका शाहकार हो। और देखा जाए तो इंसान कुदरत का बेहतरीन शाहकार है, अपनी बनाई हुई चीज़ से बहुत प्यार होता है। आप 10 चीज़ें बाजार से मंगवा लें मेहमान के लिए, लेकिन आप उसको पेश क्या चीज़ करते हैं जो आपने अपने हाथ से बनाई होती है। देखिए ये मैंने आपके लिए बनाई है, ये मैंने खुद बनाई है। अल्लाह ताला बड़े प्यार से कहता है लोगों, मैंने तुमको पैदा किया। सूरह इन्फितार में भी आता है, अल्लज़ी खलक़कुम, वो ज़ात जिसने तुमको पैदा की। कहीं अल्लाह ताला कहते हैं मैंने तुम्हारी सूरत बनाई, यहाँ कहा कि उठो मेरी इबादत करो क्योंकि मैंने तुमको बड़े प्यार से बनाया है, इसलिए तुम्हें मेरी ही तरफ आना है। तुम कुछ भी नहीं थे लेकिन मैंने तुमको पैदा किया। अच्छा, और किसको? वल्लज़ीना मिन कब्लिकुम, तुमसे पहलों को भी। या तो इंसान को अपनी ज़ात से प्यार होता है या फिर उसको अपने माँ बाप से प्यार होता है, जब तक अभी वो खुद माँ बाप के दर्जे पे नहीं फायज हुआ होता। जब तक अपने बच्चे नहीं होते ना, तो माँ बाप बड़े प्यारे होते हैं, इंसान उनसे जुदाई का सोच भी नहीं सकता। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब अपनी औलाद होती है, शौहर है, घर है, तो फिर माँ बाप पीछे पड़ जाते हैं, मोहब्बत नहीं कम होती, पर्दा आ जाता है एक। अल्लाह ताला ने यहाँ माँ बाप की बात क्यों की, इसकी 2-3 वजूहात हैं। पहली बात, ऑफकोर्स इंसान को अपने बाद अपने माँ बाप से मोहब्बत होती है। दूसरी बात ये पता चल गई कि जिस रब ने तुमको पैदा किया उसी ने तुम्हारे माँ बाप को पैदा किया था, इसलिए बाप दादा की मोहब्बत के नाम पर कोई ऐसा काम ना करना जो अल्लाह के हुक्म से टकराए। देखिए यहाँ तौहीद की दावत है अभी, अल्लाह को एक मानने की, और आप इस पूरे रुकू के एंड पे इंशाल्लाह इस काबिल हो जाएंगे कि 3 बुनियादी बातों को समझ सकें जो पूरे दीन का खुलासा है, जिसमें पहली चीज़ तौहीद है, फिर रिसालत है, फिर कुरान के साथ ताल्लुक़ है, फिर आखरत के साथ ताल्लुक़ है। यहाँ अल्लाह ताला ने ये बता दिया कि देखो अगर माँ बाप का नाम लेकर तुमने कोई शिर्क किया ना या कोई बिदअत की, तो ये याद रखना कि रब उनका भी वही है। इसी तरह एक और नुक्ता इसमें मुफस्सरीन ने बड़ा प्यारा उठाया, वो कहते हैं कि ये तो कह दिया कि वल्लज़ीना मिन कब्लिकुम, ये नहीं कहा कि वल्लज़ीना मिन बादिकुम। बात वाज़े, जिसने तुमसे पहलों को पैदा किया, बाद वाले का तذکرہ क्यों नहीं किया? ताकि इससे उम्मते मुहम्मदिया का आखिरी उम्मत होना साबित हो जाए। इस लफ्ज़ से ये बात फिर साबित हो रही है जो पीछे भी हुई थी बिमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक में, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, आपकी उम्मत आखिरी उम्मत है, इसके बाद कोई और उम्मत नहीं आएगी। लिहाजा जो बंदा भी अल्लाह की इबादत करेगा उसके पास ये दलाइल मौजूद हैं कि अल्लाह ने उसको पैदा किया और उसके माँ बाप को पैदा किया, करो क्यों? इबादत से मिले क्या क्या? कहा लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम बच जाओ। किस चीज़ से बच जाओ? दुनिया में अल्लाह की नाफरमानियों से बच जाओ और आखरत में जहन्नम का ईंधन बनने से बच जाओ, रुसवा होने से बच जाओ, तुम्हारी ज़िंदगी डिप्रेशन का शिकार होने से बच जाए, और तुम इस दुनिया में रहते हुए अल्लाह की नाफरमानियों से, उसकी नाराज़गियों से बच जाओ, गुमराहियों से बच जाओ। लिहाजा क्या बात पता चली कि अल्लाह ताला ने जहन्नम की आग से बचने की एक बहुत बड़ी बुनियादी चीज़ बता दी, और वो क्या है कि तौहीद को इख्तियार कर लो और शिर्क से बाज आ जाओ। अब रब कहने से बात तो पूरी हो गई थी, लेकिन कुछ बातें आगे, यहाँ तक देखिए आयत नंबर 21 में इनफरादी नेमतों का तذکرہ है, इंसान की तख्लीक, उसके माँ बाप की तख्लीक। अब अगली आयत में अल्लाह ताला कायनात के अंदर जो फैली हुई चीज़ें उनकी तरफ इशारा करते हैं। पहली में इंसान की ज़ात से मुतल्लिक थी, अब उसके इर्द गिर्द जो फैली हुई निशानी है उनका तذکرہ है। क्या फरमाया? अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ध फिराशा, वो ज़ात जिसने ज़मीन को फ़र्श बना दिया। कितना प्यारा बिछौना है जो उसने तुम्हारे लिए बिछाया हुआ है। आप देखिए कि ये जमीन गोल है, आज साइंस ने साबित कर दिया। ये भी पता है कि इस जमीन के अंदर आग के लावे भड़क रहे हैं, लेकिन हम कितने इत्मीनान से इस पे चलते हैं। कभी पांव जले, कभी जमीन पे फिसले, ये अल्लाह की जात है ना। अल्लाह ताला अपनी नेमते गिनवा रहे हैं कि इबादत करने का हुक्म क्यों दिए, इसलिए कि नेमते बहुत दी। फिर अब देखिए जमीन मुसलसल हरकत में है, हजारों मील फी घंटा की रफ्तार से घूम रही है। इसके बावजूद आप देखिए हम कितने इत्मीनान से बैठे हुए हैं। इसके अंदर लावे उबल रहे हैं, इसके अंदर वेल्केनोज हैं, क्या कुछ हैं, लेकिन इसकी जाहिरी सतह को हीट प्रूफ बना दिया। अल्लाह अकबर। कभी गौर करके एक इंसान देखे तो उसका दिल झुक जाता है कि अल्लाह ताला आपने इतनी प्यारी चीज मुझे दी। हम जहां बैठे हैं ना, सिर्फ हमारे नीचे जमीन ऊंची नीची होती। आप जिस कारपेट पे बैठी हैं, इस कारपेट के नीचे कोई ढक्कन होता अगर शीशी का, आप बेचैन हो जाती। आप कहते हैं नीचे से कुछ चुभ रहा है, और आप सोचें कि अगर हम पाँव जमीन पर रखते और इसके नीचे से पत्थर हमें चुभ रहे होते। अल्लाह की शान है ना। और सिर्फ जमीन की बात नहीं की, कहा वस्समा बिनान, आसमान को तुम्हारे ऊपर छत बना दिया। छत के नीचे आते इंसान अपने आप को महफूज महसूस करता है। अल्लाह ताला कहते हैं कि देखो मैंने तुम्हारे लिए जमीन ना तो इतनी नरम कर दी कि उसमें पाँव रखो तो पाँव धंसने लगे, और ना लोहे और पत्थर की तरह सख्त की कि चल ना सको, और आसमान को तुम्हारे ऊपर किस तरह छत बना दिया कि तुम जिधर से देखते हो तुम्हें खूबसूरत दिखती है। वन जलमिनस समा ईमान, और आसमान से पानी नाजिल किया बारिश की सूरत में। आज तो साइंस ने बारिश की बहुत सारी वजूहात जान ली ना, लेकिन हकीकत में देखें तो ये अल्लाह ताला का कितना बड़ा कमाल है। कैसे पानी बनता है, और सर्दियों में वही पानी बर्फ बन के आपके ऊपर बरसता है। बाल्टियों की सूरत में जरा पानी बरसता तो सोचिए क्या होता। और ये जो बर्फ एक बूंद बूंद करके गिरती है, अगर ये दो दो चार चार किलो के बड़े बड़े ढेलों की सूरत में हम पे बरसती तो हमारे तो सर फूट जाते। कोई इतने सुकून से आसमान के नीचे जा सकता था? कभी आप बहुत पुरानी किसी बिल्डिंग में गए हो ऐसे ही देखने के लिए, खौफ क्या आएगा कि ये गिर ना जाए। हमारी छतें कितनी पुरानी है अमूमन, बहुत पुरानी भी किसी की छत होगी ना 100 साल 200 साल, फिर तो नीचे लिख देते हैं कि अब इसको गिरा दो। आसमान कितना पुराना है, कोई गिन सकता है? कभी आपको जमीन पे कहीं चलते हुए ये डर हुआ कि कहीं यहां से आसमान क्रैक होके मेरे ऊपर ना गिर जाए? हाँ? हमारी छतों में दरारें आ जाती हैं, आसमान में कोई दरार दिखती है? कुछ भी नहीं, आसमानी रंग है जो कच्चा रंग होता है। कभी आसमान का रंग कहीं से उड़ा हुआ दिखा? क्यों नहीं गौर करता इंसान अल्लाह की बनाई हुई नेमतों को? और ये जो बारिश का मंजर है, ये तो इंसान की अकल को खामोश करने वाला मंजर है। सूरत वाक्या आयत 69 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या बारिश का पानी सफेद बादलों से तुमने उतारा है, या इसके उतारने वाले हम हैं? कोई जवाब दे सकता है? अल्लाह की जात है। इसी तरह सूरत नबा आयत 14 में आता है, वअनज़लना मिनल मौसिराति माअन सज्जाजा, हमने उतारा पानी भरे हुए बादलों से पानी का रेला। लिहाजा पहली नेमत जमीन फर्श बना, दूसरी नेमत आसमान छत बनी, तीसरी नेमत आसमान से बारिश उतरी मान की सूरत में, और चौथी नेमत है फाखरज बिही मिनस समराति रिज़्क़ल्लकुम। बिही की जमीर माइन की तरफ है, पानी जाता है जमीन में तो उससे फल पैदा होते हैं। बड़ी प्यारी बात है, इसमें एक बड़ी लतीफ सी बात है। देखिए कि अभी तक जितनी नेमते हैं ना तस्करा हुआ, उसमें इंसान की कोई मेहनत नहीं है, ना आसमान बना हमसे, ना जमीन बनी, ना बारिश हमारी कोशिश होती है। चौथी पे इंसान शक कर सकता था कि अल्लाह ताला फसलें तो हम उगाते हैं, फलों के बीज तो हम डालते हैं, काश्तकारी तो किसान करता है। तो अल्लाह ताला ने फौरन बिही की जमीर लगा के बता दिया, कोई किसान जितनी मर्जी जमीन खोद ले, वो उसमें जितना मर्जी मेहनत कर ले, हल डाल ले, जब तक बारिश का पानी उसमें नहीं आता फसल नहीं उगती। तो आप कह सकते हैं कि एक किसान जो है वो मदद तो करता है कायनात के इस निज़ाम में, बीज डालता है, उसकी हिफाजत करता है, कोमल निकले, गर्मी सर्दी से उसको बचाता है, लेकिन जब तक पानी नहीं आता तब तक बीज फूलता नहीं है। तो लिहाजा कोई इस फख्र में ना रहे कि ये हम करते हैं, बल्कि ये अल्लाह की शान है। सूरत वाकिया ही की आयत नंबर 63 और 64 में आता है, अफराई तुम मा तहरुसून अंतुम तजरऊनहू अम नहनु ज़ारिऊन। बतलाओ तो सही, जो कुछ बीज तुम बोते हो इसे तुम उगाते हो या हम उगाने वाले हैं? किसी किसान से जाके पूछिएगा कितने बीज डालते हैं और उसमें से कितने निकलते हैं। ये सरासर अल्लाह के हाथ में। जो ज़ात इतना कुछ करे, चार सिफात बता दी, कहा अब इन नेमतों का तकाजा क्या है कि फला तजअलू लिल्लाहि अंदादन। बस जब उसने इसमें किसी की मदद नहीं ली ना, तो तुम भी उसका कोई शरीक ना बनाओ। वान तुम तालमून, और तुम तो जानते हो, तुम्हें इल्म है इस बात का कि अल्लाह ताला के सिवा ये काम कोई नहीं कर सकता। ये उसकी रहमत है कि उसने ये सब कुछ किया और एक इंसान को इस दुनिया में पेश कर दिया। अंदाद का लफ्ज़ निद की जमा है, मद्दे मुकाबिल के मानों में आता है। कभी आप खुतबा जुमा गौर से सुने तो अक्सर एंड पे आता है ला जिद्द लहू, ज़ात से अगर पढ़ें, लेकिन दुआत से पढ़ें तो ला जिद्द लहू वला निद्द लहू, यानी ना तो उसका कोई मुखालिफ है और ना उसका कोई पार्टनर है। एक मौके पे हजरत इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अल्लाह के नबी सल्लम से पूछा कि अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे बड़ा गुनाह क्या है? तो आपने फरमाया अंतज अललिल्लाहि निद्दा वहुवा खलकक, ये कि कोई इसका मद्दे मुकाबल बनाए हालांकि उसने तुझे पैदा किया। तो लिहाजा अल्लाह ताला कहते हैं कि गैरों की गुलामी से निकल कर मेरे गुलाम बन जाओ, मत इधर उधर भटको, दर दर के भिखारी मत बनो, सिर्फ अल्लाह की तरफ आओ। देखिए नेद बहुत अहम लफ्ज़ है। जिस तरह कोई इंसान, चाहे वो कितना ही नेक क्यों ना हो, कोई वली, कोई शख्स किसी दर्जे पे भी पहुंच जाए, जब उसको नहीं पुकार सकते तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं पुकार सकते। एक मौके पे एक सहाबी ने आपके सामने कह दिया कि माशा अल्लाह व माशीता, अल्लाह के नबी वो होगा जो अल्लाह चाहेगा और आप चाहेंगे। हमारे यहाँ भी ऐसे कहते हैं बाज़ लोग, क्या कहते हैं, जो अल्लाह और उसका रसूल चाहे वही होगा। कभी भी नहीं, अल्लाह के नबी ने जूं ही उनकी बात सुनी कहा अजालतनी लिल्लाहि निद्दा, क्या तू मुझे अल्लाह का शरीक बनाता है? माशा अल्लाह वहदा, बल्कि वो होगा जो एक अल्लाह चाहेगा। तो अकायद की इस्लाह इसमें कि देखो अल्लाह के साथ नबी को भी शरीक ना करो। अल्लाह का नाम लिखते हो ना तो नबी का नाम नीचे लिखो, बराबर भी ना लिखो। अगर एक तरफ तुम खाना काबा की तस्वीर लगाते हो तो उसके बराबर मस्जिद नबी की भी ना लगाओ, दोनों के मुकाम और मर्तबे में फ़र्क है। ये खुफिया रास्ते हैं जहाँ से शिरक आता है और चोर दरवाजे हैं। और बाज़ दफ़ा आप देखिए कि लोग नमाज पढ़ने के लिए जो जाए नमाज भी चाहते हैं उस पर मस्जिद नबी की तस्वीर बनी होती है। अल्लाह ताला कहते हैं फला तजअलू लिल्लाहि अंदादा। शिरक हमेशा मोहब्बत से फैलता है, इंसान की तबीयत के अंदर ये चीज़ आती है कि वो किसी से मोहब्बत करे, किसी को पूजे। जब ये जज्बात अल्लाह से नहीं पूरे किए जाते ना, तो फिर वो दूसरों में जाने लगते हैं। इसीलिए ऐसी तमाम चीज़ों से बहुत केयरफुल रहना चाहिए। इंसान की कमज़ोरी है, जिस चीज़ से मरूब होता है, इम्प्रेस होता है, उसको पूछने लग जाता है। कोई आग से इम्प्रेस हुआ तो आग को पूछने लग गया, कोई पानी से, कोई बंदर से, कोई किसी से, कोई किसी से। अल्लाह ताला ने बताया कि सबको छोड़कर मेरी तरफ आ जाओ। आप देखिए कि अल्लाह ताला की ज़ात को छोड़ के दूसरी तरफ जाने वाले की मिसाल तो ऐसे ही है कि जैसे किसी ऑफिसर की बात को छोड़कर बाहर बैठे हुए चपड़ासी की बात मानने लग जाए, बादशाह से मांगने की बजाय उसके बाहर बैठे हुए मंगतों से मांगने लग जाए। तो लिहाजा ये शिर्क का मौजू पूरे कुरान पाक में आता ही रहेगा। और ये थी वो दावत जिसने एक इनकलाब पैदा कर दिया था दुनिया में। और यही दावत मक्का वालों को बड़ी बुरी लगती थी। उन्होंने 313 बुत बना लिए हुए थे, लात मनात उज्जा, आगे जाके हम पढ़ेंगे उनकी हिस्ट्री। जो बुजुर्ग फौत होता उसके नाम का बुत बना के उसका स्टैचू रख लेते। शुरू में शबीहें थी, आहिस्ता आहिस्ता वो आइडल्स की सूरत हुई, सूरत में बदला, और नतीजा क्या निकला कि उसके बाद उसको उन्होंने اپنی عبادت میں شامل کر لیا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مت کرو شرک، اپنے آپ کو بچا لو، جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس لیے کہ یہ درست نہیں، جو راستہ تم نے اختیار کیے وہ درست نہیں ہے. اللہ کے نبی تو کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے تھے، وہ دنیا کے کاموں میں کیسے شامل ہوں گے؟ سورت قصص آیت 56 میں آتا ہے، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے نبی، یقیناً آپ جسے چاہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. کیونکہ اگر ہدایت کا معاملہ اللہ کے نبی کے ہاتھ میں ہوتا تو ابو طالب دنیا سے ایمان لائے بغیر رخصت نہ ہو جاتے. تو لہٰذا یہاں تک پہلی بات پوری ہوئی، یہ ہے توحید، دین اسلام کا بیسک رکن، فنڈامنٹل آف اسلام، کہ ایک رب کو مانو. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ جب کبھی کسی کی کو دین کی دعوت دو نا، تو بات توحید سے شروع کرو، نیل پالش لگانے سے بات نہ شروع کرو، یہ کھا سکتے ہو کہ وہ کھا سکتے ہو، اس سے بات شروع نہ کرو. یہاں ترتیب دیکھے، یا ایہا الناس، ایسے لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تبلیغ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انسانیت کو پیغام دے رہے ہیں. تو پہلا پیغام توحید کا پیغام ہے، اور آج لوگ اسی میں بڑے ڈھیلے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں بڑے بڑے عمل کرو، زیادہ زیادہ کرو، عقیدے کی بات نہ کرو. اب یہاں سے آگے آیت نمبر 23 سے دوسرا ٹاپک شروع ہوگا، میں آپ کے سامنے رکھوں گی، پھر انشاءاللہ ہم اس کو ساتھ ساتھ دیکھیں گے. فرمایا، وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ، اور اگر تم شک میں ہو، کس چیز سے؟ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اس سے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا. یہاں بندہ کون ہے؟ کوئی بتائے گا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہاں پہلی بات تو یہی نوٹ کر لیجئے کہ نبی کی بشریت کو ثابت کر دیا، اللہ کے نبی کو بندہ مانو، یا محمد بھی نہیں کہا صلی اللہ علیہ وسلم، عبد کہا، کیونکہ پیچھے بندگی کا تصور تھا، عبادت کا ذکر تھا، اللہ کے نبی بھی اللہ کے بندے ہی تھے. آگے ہم پڑھیں گے حضرت عیسیٰ کو بھی اس میں کوئی انکار نہیں تھا کہ وہ اللہ کے بندے ہوتے، اور نبی بھی اللہ کے بندے ہوتے ہیں. اگر تمہیں شک کے اس پر جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا، تو فاتو بصورت من مثلہ، تو پس لے آؤ ایک صورت اسی کے برابر. کس کے برابر؟ کوئی چھوٹی سے چھوٹی صورت، صورت اثر کے برابر، صورت کوثر کے برابر، چھوٹی سے چھوٹی صورت کے برابر کوئی ایک صورت لے آؤ. اکیلے نہیں کر سکتے، تو ودعو شہداءکم من دون اللہ، بلا لو اپنے گواہوں کو، اپنے ہیلپرس کو، بس اللہ کے سوا ہر ایک کو بلا لو. اگر تم سمجھتے ہو کہ ان کی مدد سے اس قرآن پاک جیسی ایک کتاب پیش کی جا سکتی ہے، تو جاؤ کر لو. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. کس بات میں سچے ہو؟ اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ ہم اس قرآن جیسا کلام پیش کر سکتے ہیں. اچھا، یہاں پہ چیلنج ہے، لیکن پھر ساتھ ہی کہہ دیا وہ بات جو ہونی تھی، کیا؟ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، دیکھو اگر تم نہ کر سکو، کیا؟ اس قرآن کے تقابل میں کوئی اور کتاب پیش کر سکو. وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز نہیں کر سکو گے. تو پھر یاد رکھو کہ فَتَّقُوا النَّار، بچ جاؤ آگ سے، ڈر جاؤ اس آگ سے. کون سی آگ؟ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ، وہ آگ جس کا ایندھن لوگ ہوں گے. اور والحجارہ، اور پتھر. کون سے لوگ اور کون سے پتھر؟ اللہ تعالیٰ انسانوں کو آگ میں ڈالے گا جنہوں نے غلط کام کیے، اور وہ پتھر کے بنے ہوئے بت بھی آگ میں ڈال دے گا جن کو لوگ دنیا میں پوچھتے تھے. کیوں؟ ان کو رسوا کرنے کے لیے، کہ جن کے سامنے سجدے دیتے تھے، جن کے سامنے ماتھے ٹیکتے تھے، آج تو وہ خود اپنے آپ کو آگ سے نہیں بچا سکتے، تو ہمارا کیا یہ کر سکتے تھے؟ اور پتھروں کو تو کوئی تکلیف نہیں ہونی نا، ان کو کیا؟ اصل میں ان کے عبادت کرنے والوں کو ذلیل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ان پتھروں کے بتوں کو بھی آگ میں ڈال دے گا. کون سی آگ؟ اعدت للکافرین، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی. مسلمانوں کو تو شوق ہے بس اس میں جانے کا، اصل میں تو اللہ نے یہ کافروں کے لیے تیار کی تھی. دو باتیں پتہ چلتی ہیں اس سے، اعدت ماضی کا سیگا ہے، پاسٹ ٹینس ہے. پہلی بات تو پتہ چلی کہ اس وقت بھی جہنم تیار ہو چکی ہے، موجود ہے اس وقت بھی، ये अलग बात है कि अल्लाह ने उसको गैब के पर्दे में छुपाया हुआ है, और दूसरी बात पता चली कि वो काफिरों के लिए बनी थी, मुसलमानों के लिए नहीं है। ठीक है, क्या सारे कुफर के ऊपर जाएंगे या सारे लोग जो हैं वो जहन्नुम में जाएंगे का? नहीं, वबशिरिल लजीना आमनू वामिलु सालिहाती अन्नलहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार। और खुशखबरी दे दो ईमान वालों को और अमल सालेह करने वालों को कि उनके लिए जन्नतें हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं। क्या होगा? कुल्लमा रुज़िकू मिन्हा मिन समरातिर रिज़्क़ा, जब कभी वो वहाँ फलों में से रिस्क दिए जाएंगे। सोचिए ज़रा, अपने आप को वहाँ महसूस करें, आपको फल दिए गए, अब होगा क्या? कालू, वो कहेंगे, कौन जन्नती? हाज़ल्लज़ी रुज़िक़ना मिन कब्ल, ये तो वही चीज़ है जो हमें इससे पहले दी गई। यानी जन्नत के जो फल हैं वो शक्लो सूरत में दुनिया के फलों ही जैसे होंगे। क्यों? इसलिए कि इंसान की आदत है कि वो नई चीज़ को मुंह में नहीं डालता। आप जो फल बचपन से खाते आ रहे हैं ना, वही खाएंगे। हर इलाके के एक मखसूस कुछ फल होते हैं। अल्लाह ताला जन्नत में लोगों को इतनी भी तकलीफ़ नहीं देना चाहते कि जिसकी वजह से वो ये सोचें कि हमने ये खाना है कि नहीं खाना। इसी तरह बास कहते हैं कि जन्नत में ही पहले दिए होंगे तो अब दोबारा दे रहे हैं, दोनों ही बातें मौजूद हैं। अब क्या होगा? उन फलों को देखकर क्या कहेंगे? ये वही हैं जो हमको पहले दिए गए। वो उतूब ही मुतशाबिहा, और फल मिलते जुलते होंगे। किससे मिलते जुलते होंगे? इसकी चार पांच मुख्तलिफ तफसीर हैं। पहली बात है दुनिया के फलों से मिलते जुलते होंगे, फिर दूसरी बात कि जन्नत के फल आपस में हमशक्ल होंगे, तीसरी चीज़ है उनके अमलों से मुतशाबे होंगे, यानी जैसे अमल वैसे फल। फिर इसी तरह ये है कि जो फल हैं उनके रंग आपस में मिलते होंगे। अल्लाह ताला कहते हैं उनको देख कर कहेंगे ये तो वही हैं। दुनिया में भी इंसान की आदत होती है, खाना खाते वक्त पूरा वक्त खाने की बात कर रहे होते हैं, यहाँ से ली ये पकाई, अच्छा वहाँ जाना, वहाँ सस्ता मिलता है। खाने की टेबल पे अमूमन खाने की बातें हैं, अलग बात है हमारी उस टेबल के बगैर भी उसी की ज़्यादा बातें होती हैं। लेकिन ऐसे लगता है कि जन्नती खाना खाते हुए साथ ही कह रहे हैं, अच्छा अच्छा ये पहले भी मिलते थे, ये वो भी थे, ये भी थे। वलहुम फीहा अज़्वाजुन मुतहरतुन, और उनके लिए वहाँ पाकीज़ा जोड़े होंगे, बीवियाँ और शौहर। ऐसे लगता है कि रोटी कपड़ा और मकान सब चीज़ों का तस्करा आ गया जन्नत में, है क्योंकि खाने की चीज़ हो लेकिन साथ बैठ के खाने वाला ना हो तो भी मज़ा नहीं आता। यहाँ पे तिलावत सुनते हैं, सुनते वक्त इस वक्त ये सोच के सुनिए कि पता नहीं आगे क्या बात होगी। जो आयतें हो चुकी हैं उसको तो सुनने का ये है कि आपके पास जो नोट्स हैं उसकी रोशनी में सुनेंगे, लेकिन जो अगली आयतें हैं इस तजस्सुस के तहत सुनिए कि पता नहीं इसमें आज क्या होगा। और इंशाल्लाह आपका ये शौक रखना भी आपके लिए फायदेमंद होगा।
يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون